अभिमन्यु और इशिका राजवंश हाउस लौट आए थे। पूरे रास्ते अभिमन्यु वसुधा की हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान था। घर आते ही उसने इशिका की तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी से निकलकर वसुधा के विला की तरफ तेज कदमों से जाने लगा। इशिका भी उसके पीछे आ रही थी। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि बाकी की राजवंश फैमिली वहीं पर इकट्ठी थी। अभिमन्यु को देखते ही उसके डैड प्रशांत ने कहा, मेरी माँ सबसे ज्यादा इस लड़के से प्यार करती है, लेकिन इसे अपनी पत्नी से फुर्सत ही नहीं मिलती। पिछले दो दिनों से ये उसके साथ हॉस्पिटल में था। इसे जरा भी फिक्र नहीं कि इसके पीछे से मेरी माँ की क्या हालत हो रही है। जब से ये लड़की यहाँ पर आई है, इसने माँ की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। प्रशांत भी अच्छे से जानता था कि अभिमन्यु की पहली प्रायोरिटी वसुधा थी और वो अपना पूरा काम छोड़कर उसके पास आ जाता था। अभिमन्यु ने गुस्से से एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर वसुधा के कमरे में चला गया। इशिका भी अभिमन्यु के साथ कमरे में आई थी। उन्होंने देखा कि वसुधा आराम से सोई हुई थी। उन्हें ठीक देखकर अभिमन्यु और इशिका ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। वसुधा को देखने के बाद अभिमन्यु और इशिका कमरे से बाहर आए। वसुधा का डॉक्टर भी वहीं पर था। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, दादी की हालत अब कैसी है? फिलहाल तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास अब ज्यादा टाइम बचा है। मुश्किल से 3 या 4 महीने वो निकाल पाएंगी, डॉक्टर ने जवाब दिया। बाकी लोगों को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि वसुधा की हेल्थ के चलते अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सच जानते हुए भी अभिमन्यु ने ये सब फिर से सुना तो उसका दिल टूट गया था। इशिका अभिमन्यु के पास जा रही थी ताकि उसके इस मुश्किल वक्त में वो उसके साथ खड़ी रह सके। इशिका अभिमन्यु के पास जाकर कुछ कहती, उससे पहले अभिमन्यु ने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे दादी की जान बचाई जा सके? डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाकर कहा, मैं आपसे बात करने के लिए आ ही रहा था। आप हमेशा डॉक्टर अनामिका की बनाई हुई दवा के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अनामिका की रिसर्च पूरी हो चुकी है और दवाइयाँ अब अपने क्लिनिकल ट्रायल पर आ चुकी हैं। ये एक अच्छी खबर थी जिससे अभिमन्यु की आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। तभी डॉक्टर ने आगे कहा, क्लिनिकल ट्रायल उनके लैब के हॉस्पिटल में दिल्ली में हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये अब तक की दवाइयों में सबसे असरदार दवा साबित होने वाली है, लेकिन डॉक्टर बोलते हुए बीच में रुक गया तो अभिमन्यु ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन जिन भी पेशेंट को ये इलाज मिल रहा है उन्हें पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया है। ऊपर से सभी पेशेंट्स काफी कम उम्र के हैं। इलाज के दौरान उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए वसुधा जी के लिए किसी भी तरह का ट्रैवल करना उनकी हेल्थ के लिए सही रहेगा। डॉक्टर ने पूरी बात बता दी थी। दवाई अपने क्लिनिकल ट्रायल में थी, इसीलिए बाहर भी नहीं भेजी जा सकती थी। अभिमन्यु एक पल रुका और फिर सख्त आवाज में बोला, उनकी कंपनी खरीद लो। उसने जरा भी नहीं सोचा ये फैसला सुनाने से पहले। अभिमन्यु के कहते ही नकुल ने तुरंत कहा, पागल हो गए हो तुम? जो कंपनी ये दवाई बना रही है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है। वो आसानी से तुम्हें अपनी इतनी बड़ी कंपनी क्यों बेचेगी जो फिलहाल टॉप 2 में आती है? हमारे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जाकर हर दूसरी चीज को खरीदने लग जाएं। अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु ने पहले भी वो कंपनी खरीदने की कोशिश की थी और उस कंपनी में जिसके भी शेयर्स थे उनसे कॉन्टैक्ट किया था। उसने लगभग सभी को मना लिया था, लेकिन डॉक्टर अनामिका से वो आज भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया था। डॉक्टर अनामिका उस कंपनी की रिसर्चर थी जिसके नाम पर लगभग 30% शेयर थे। अभिमन्यु इस बात से अनजान था कि वो रिसर्चर डॉक्टर कोई और नहीं, इशिका ही थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और डॉक्टर से कहा, मैं अपनी तरफ से कंपनी खरीदने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कैसे भी करके वो दवाई हासिल करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने उसकी बात पर हामी भरी। इशिका ने दादी का केस पहले ही भेज दिया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अनामिका के तौर पर उसकी पहचान सामने आए। वो अपना नाम इसलिए छुपाकर रखना चाहती थी ताकि बाकी कोई कंपनी पैसों के दम पर उसे हायर करने की कोशिश करे। इशिका ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मुझे पता चला है कि दादी का केस वहां पहुंच चुका है। इशिका उन्हें आगे भी बताना चाहती थी, लेकिन नकुल ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, माना कि तुम भी एक रिसर्चर डॉक्टर हो, लेकिन इस फील्ड में तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। डॉक्टर ने अभी कहा कि जिन पर ट्रायल किया जा रहा है उनकी उम्र काफी कम है, जबकि दादी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। जिन भी लोगों को ट्रायल के लिए चुना गया है वो हॉस्पिटल ने खुद से चुना है, या फिर कुछ लोगों को अपनी पहचान के दम पर वहां जगह मिली है, थैंक्स टू योर हस्बैंड अभिमन्यु, जिसकी वजह से हमारी दिल्ली में किसी भी बिजनेस फैमिली या पावरफुल आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से नकुल की तरफ देखा तो प्रशांत ने कहा, अपने बड़े भाई को इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम अपनी माँ के साथ रिलेशन सही कर लेते तो आज हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। नकुल मन ही मन खुश हुआ क्योंकि हमेशा की तरह प्रशांत ने उसका साथ दिया था। नकुल ने इशिका की तरफ देखा और कहा, और तुम इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रही हो? तुम भी बिल्कुल अपने पति की तरह हो। दिल्ली की वन ऑफ दी पावरफुल फैमिली है सिंघानिया फैमिली। उनसे तुम्हें रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए ताकि वो हमारे काम आ सके। इशिका उन्हें जवाब देने वाली थी, तभी अभिमन्यु ने पूछा, मुझे इन लोगों की बहस से कोई लेना देना नहीं है। इशिका, तुम मुझे बताओ कि क्या हमें डॉक्टर अनामिका से वो दवाइयाँ मिल सकती हैं? नकुल ने फिर से दखल देते हुए कहा, अरे तुम इसे क्यों पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। डॉक्टर अनामिका ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए खुद पेशेंट को सिलेक्ट किया है। राजवंश फैमिली पावरफुल है, लेकिन दिल्ली की सभी पावरफुल फैमिलीज ने पहले ही सीट फुल कर दी थी। हाँ, ये बात अलग है कि हमें दादी के लिए जगह मिल गई है, ये सब नायरा की वजह से हुआ। इशिका ये सुनकर चौंक गई थी। अभी तक ट्रायल किए गए पेशेंट को भी शॉर्टलिस्ट करना जरूरी था, फिर इतना कन्फर्म होकर वो दादी का नाम कैसे ले सकते थे? उसके लिए नायरा का नाम भी नया था। नायरा का नाम आते ही प्रशांत ने तुरंत पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल डैड, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप तो जानते हैं नायरा अपनी स्टडीज के लिए दिल्ली गई हुई थी, वहां हमारे लिए वो कुछ कर रही है। उसकी यूनिवर्सिटी ग्रेड भी काफी अच्छे थे। आपको पता है वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और उसी की वजह से हमें दादी के लिए दवाइयां मिल पा रही हैं, नकुल ने खुश होकर बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं उसे पहली बार मिला था तभी समझ गया था कि वो काफी इंटेलिजेंट है, प्रशांत ने जवाब दिया। नकुल ने खुश होकर कहा, आप जानते हैं उसका बॉयफ्रेंड कौन है? वो दिल्ली के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से आता है, वो वहाँ की जिंदल फैमिली से बिलोंग करता है। नायरा इस बार उसे अपने साथ लेकर आ रही है और वो दोनों सगाई करने वाले हैं। हाँ, तो उसे कहो कि वो यहाँ पर आकर रहे और उसकी शादी भी राजवंश विला से ही होगी, प्रशांत ने कहा। इशिका अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये नायरा कौन थी। जैसे ही नायरा के घर पर रहने आने की बात हुई, उर्वशी गुस्से में चिल्लाकर बोली, लेकिन वो इस घर में कैसे आ सकती है डैड? आप अच्छे से जानते हैं कि वो नकुल की नाजायज बेटी है, इस तरह की लड़कियां इस घर में नहीं रह सकती हैं। उर्वशी की बातों से इशिका को समझ आ गया था नायरा कौन है। वो नकुल की बहन थी, चाहे वो उससे बड़ी हो या छोटी।
उर्वशी के बीच में दखल देने पर प्रशांत ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम लोगों को इस छोटी सोच से आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा प्रोफेशनल रिश्तों में पर्सनल रिश्ते ले आते हो, तभी हम आज कैपिटल सिटी में अपना बिजनेस नहीं जमा पा रहे हैं। पहले तो अभिमन्यु की वजह से सब खराब हुआ और अब तुम बीच में दखल दे रही हो। अगर जिंदल फैमिली के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो फिर चौहान फैमिली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पिछली बार अभिमन्यु की वजह से हमें जो भी नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद चौहान फैमिली ने हमारी काफ़ी इमेज डाउन की थी। चौहान फैमिली और अपनी मॉम का जिक्र आते ही अभिमन्यु की आँखें गुस्से से सर्द होने लगी थीं। उसने इस फैमिली और बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन फिर भी आज उसे ताने सुनाए जा रहे थे। अभिमन्यु भले ही कुछ न कहे, लेकिन इशिका आगे आई और उसने गुस्से में कहा, आज राजवंश एम्पायर पूरे इंडिया में टॉप कंपनीज में आता है, फिर भी आप लोग अभिमन्यु को ब्लेम कर रहे हो। ये सब उसी की वजह से है। कैपिटल सिटी मायने नहीं रखती। अगर किसी को बिजनेस करना होगा तो वो खुद यहाँ आएगी, जैसे मित्तल फैमिली आई थी। किसी के सामने झुक कर या चापलूसी करके आप कुछ हासिल करते हैं तो वो अपने दम पर नहीं होता है, और अभिमन्यु ने कभी भी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया था। अभिमन्यु के लिए कभी उसका परिवार मायने नहीं रखता था। वो चाहे उसे कुछ भी कहे, वो ज़रूरत पड़ने पर ही पलटकर जवाब देता था। लेकिन आज इशिका उसके लिए खड़ी थी। ये देखकर उसके चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल आ गई थी। राजवंश फैमिली में शायद ही वसुधा के अलावा कोई होगा जो अभिमन्यु के लिए खड़ा होता था, लेकिन आज उनकी एब्सेंस में इशिका अभिमन्यु का साथ दे रही थी। नकुल ने आँखें छोटी करके इशिका की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें लगता है कि किसी की मदद मांगना उसके सामने झुकना होता है? तो रहो अपने पति के इसी एटीट्यूड के साथ। क्या तुम लोगों का घमंड ज्यादा जरूरी है या फिर दादी की बीमारी? आज नायरा की वजह से हमें दादी के लिए सीट मिली है और दवाइयां मिल रही हैं। उनका एहसान मानने के बजाय तुम यहाँ ज्ञान दे रही हो, फिर उन्होंने अभिमन्यु को टारगेट करते हुए कहा। जिंदगी में कभी कभी जरूरत पड़ने पर झुकना भी पड़ता है। तुम्हारी बहुत पहचान होगी या हमारे पास पैसे भी होंगे, लेकिन डॉक्टर अनामिका से आज तक हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। आज नायरा की वजह से हमें दवाइयां मिल पा रही हैं क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। अगर तुम्हारे इसी घमंड की वजह से दादी को कुछ हो गया तो फिर क्या जवाब दोगे तुम खुद को अभिमन्यु? अभिमन्यु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्लिनिकल ट्रायल के बाद में भी दवाई मार्केट में आने में कम से कम एक साल का टाइम लग जाता था, और इतना टाइम वसुधा के पास नहीं था। अभिमन्यु को एक पल के लिए उनकी बातें सही लग रही थीं कि कई बार किसी के सामने झुकना या उनकी मदद मांगना गलत नहीं होता। इन सब के बीच इशिका के मोबाइल की घंटी बजी। वो दूसरी तरफ चली आई। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से राधिका की कमजोर और धीमी आवाज आई, मैं ठीक हूं इशिका, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो? राधिका को होश आ गया था। होश आते ही वो सबसे पहले इशिका से बात करना चाहती थी। उनकी आवाज सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगी। वो जल्दी से बोली, मैं बस अभी आ रही हूं मॉम। इशिका को भी राधिका से बहुत सारी बातें करनी थी। सच्चाई सामने आने के बाद उसने एक बार भी उनसे बात नहीं की थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इसका असली बाप कौन है। इशिका बात करने के लिए दूसरी तरफ आई थी। कॉल रखने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दूसरी तरफ पलटी तो सामने अभिमन्यु था। मिसेस सिंघानिया को होश आ गया क्या? अभिमन्यु ने ऐशिका के चेहरे की तरफ देखकर पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया था। अभिमन्यु ऐशिका के साथ जाना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसका ध्यान दादी के कमरे की तरफ चला गया। ऐशिका उसकी कश्मकश को समझ सकती थी। उसने अभिमन्यु का हाथ सहलाते हुए कहा, तुम यहाँ दादी के पास रहो, मैं मिसेस सिंघानिया से मिलकर आती हूँ। अभिमन्यु ने उससे कोई जिद नहीं की। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कॉल पर कहा, पृथ्वी, तुम ऐशिका को लेकर हॉस्पिटल जाओगे, उसे किसी चीज की जरूरत हो तो ध्यान रखना। उसके बाद अभिमन्यु ने ऐशिका से कहा, अगर मेरी जरूरत हो तो कॉल कर देना। ऐशिका ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उनके बीच का रिश्ता बाकी कपल्स जितना गहरा नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते थे। ऐशिका बाहर आई और वो पृथ्वी के साथ गाड़ी में थी। हालांकि उसे तेज गाड़ी चलाने पर दिक्कत होती थी, तो हमेशा की तरह गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। फिर भी ऐशिका का मन कर रहा था कि वो उड़कर राधिका के पास पहुंच जाए और उसे अपने गले लगाए। लगभग एक घंटे बाद ऐशिका जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी नजर पार्किंग एरिया में गई, जहां दूर दूर तक केशव की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। लगता है मिस्टर सिंघानिया यहां से चले गए हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो मॉम से बात करनी है। हमेशा मैंने यही सपना देखा था कि काश मिसेस सिंघानिया मेरी माँ होती, वो मेरी ही माँ है, ऐशिका ने नम आंखों से कहा, बार बार उसकी पलकें भीग रही थी। अब ऐशिका एक पल का भी इंतजार नहीं करना चाहती थी, वो दौड़ते हुए ऊपर पहुंची।